नमस्कार, गुड इवनिंग, शुभ संध्या दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ही कार्यक्रम स्पोर्ट्स कैन में। अगले 15 मिनट खेल जगत की ढेर सारी खबरें होंगी, उन पे चर्चा भी करेंगे। स्वीकार कीजिए लवलीन निगम का नमस्कार। और खेल खबरों पे चर्चा के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं वरिष्ठ खेल पत्रकार राकेश थपलियाल। राकेश नमस्कार, स्टूडियो में आपका स्वागत है।
लवलीन जी नमस्कार।
तो राकेश, देखा जाए आजकल तो खेलों में बहुत कुछ चल रहा है, उधर पैरा एथलेटिक चल रही है, मलेशिया मास्टर्स है, आईपीएल है, तो खेलों में अगर आजकल देखा जाए तो खूब जलवा छाया हुआ है खेल।
हाँ बिल्कुल, खेल प्रेमियों के लिए बहुत जबरदस्त है और खिलाड़ियों के लिए भी है कि अलग अलग जगहों पे हमारे खिलाड़ी खेल रहे हैं और अलग अलग खेलों के अंदर और बेहतरीन प्रदर्शन भी कर रहे हैं। ये
बेहतरीन भी कर रहे हैं और अब लंबे समय तक हम अच्छे अच्छे खेल और खेलों का जो है वो अलग अलग स्पर्धाएं चलती रहेंगी। पहले हम सुर्खियां कर लेते हैं फिर चर्चा करेंगे। मलेशिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट में पीवी सिंधु और अश्मिता चालिया महिला सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल में पहुंची। पैरा एथलीट मोनू घणगस ने डिस्कस थ्रो में पैरालंपिक टूर्नामेंट के लिए क्वालिफाई किया। आईपीएल क्रिकेट के एलिमिनेटर मुकाबले में कल राजस्थान रॉयल्स ने रॉयल चैलेंज बेंगलुरु को 4 विकेट से हराया और आईओसी ने पेरिस ओलंपिक खेलों में भाग लेने वाले खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए लेट्स मूव इंडिया पहल शुरू करने की घोषणा की। शुरुआत रैकेट की दुनिया से। मलेशिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट में पीवी सिंधु और अश्मिता चालिहा क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। सिंधु ने दक्षिण कोरिया की यू जिन सिम को 21-13, 12, 21, 21, 14 से हराया। क्वार्टर फाइनल में अब खेलेंगी वो वाई हेन से। अश्मिता चालिहा की बात करें, अमरीका की बिवेन झांग को 21-19, 16, 21-21, 12 से हराकर क्वार्टर फाइनल में पहुंची हैं। क्वार्टर फाइनल में अश्मिता चालिहा खेलेंगी वाई एम चेंग से। पुरुष सिंगल्स के प्री क्वार्टर फाइनल में किरण जॉर्ज मलेशिया के जी जियाली से 13-21, 18-21 से हार गए। पुरुष डबल्स महिला डबल्स के भी हमारी चुनौती समाप्त हो गई है, महिला सिंगल्स में बची हुई है। राकेश देखा जाए पीवी सिंधु का हालांकि प्री क्वार्टर फाइनल मुकाबला काफी टफ रहा, 21-13, 12, 21-21, 14।
देखिए पीवी सिंधु के साथ जो दिक्कतें रही ना घुटने की चोट से उबरने के बाद
जी,
उनका प्रदर्शन वैसा नहीं रहा कि जैसे उनसे उम्मीद की जाती है कि भाई दो ओलंपिक मेडल जिस खिलाड़ी ने जीते हुए हों, लेकिन इस पे क्या है, फिटनेस का बहुत बड़ा वो है। और मुझे मतलब मैं आपको बताऊं कि बहुत साल पहले ही पीवी सिंधु ने इस बात को कहा था कि आप लगातार टूर्नामेंट जीत नहीं सकते, क्योंकि बैडमिंटन के इतने टूर्नामेंट होते हैं कि ऑलमोस्ट हर हफ्ते 10 दिन बाद एक टूर्नामेंट शुरू होता है, मतलब यात्रा भी आप पूरी नहीं कर पाते तब तक वो टूर्नामेंट शुरू हो जाता है। तो उन्होंने कहा था कि हर टूर्नामेंट कोई भी खिलाड़ी नहीं जीत सकता, आप जीतेंगे कुछ हारेंगे, मतलब कि ये रियलिस्टिक बातचीत थी कि भाई ये चीज है। लेकिन अब देखिए जैसे क्वार्टर फाइनल में पहुंची है, तो जो पिछली 6 चैंपियनशिप में वो 2 बार क्वार्टर फाइनल तक पहुंचे,
हाँ,
तो प्रदर्शन इतना अच्छा नहीं रहा। 2022 में उन्होंने सिंगापुर ओपन के रूप में चैंपियन बनी थी वो, और यहां अब लग रहा है कि जिस तरीके का उनका खेल है कि शायद इस टूर्नामेंट के अंदर वो यहां पर अपना खिताबी सूखा जो है वो पूरा करेंगी कि 2022 के बाद पहली बार वो यहां पर जीत सकते हैं। और ओलंपिक से पहले जितना वो अच्छा प्रदर्शन करती जाएंगी तो मुझे लगता है वो उनके कॉन्फिडेंस के लिए
और
भी बड़ा अच्छा
है। आमोगुची और कुछ खिलाड़ी इसमें खेल भी नहीं रहे हैं, हाँ। तो शायद उसका भी इनको फायदा मिलेगा।
देखिए फायदा मिलने वाली बात, जब हम किसी खिलाड़ी से ओलंपिक मेडल की उम्मीद करते हैं और जिसने ओलंपिक मेडल जीते हों, तो जो दुनिया के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी हैं आपको उनको हराने की क्षमता और उनके साथ आपका सामना तो होगा ही होगा, भाई इस टूर्नामेंट में नहीं होगा अगले में होगा, नहीं तो ओलंपिक्स के अंदर होगा। तो आप कभी भी ये बच के तो नहीं रह सकते कि भाई फला खिलाड़ी नहीं है तो मुझे उसका फायदा मिल जाए, मुझे लगता है वो थोड़ी सी नेगेटिव सोच खिलाड़ियों की हो जाती है।
पर ये कि शायद इनका थोड़ा जो कहे ना, एक तरह का मोराल थोड़ा नीचे जा रहा है, वो शायद ऊपर आएगा।
हाँ, ये फायदा होता है कि जब आप चोट से उभर कर आते हैं तो उस समय आपको ज्यादा टफ कॉम्पिटिशन अगर नहीं मिलता और एक खिताब आपके साथ जुड़ जाए, क्योंकि क्या होता है कि जो आम बैडमिंटन प्रेमी है वो इन सब चीजों को नहीं जानता है, बारीकियों को, उनको टाइटल नजर आता है। और फिर जिस खिलाड़ी ने ओलंपिक में मेडल आपके लिए जीते हुए हों तो उससे तो खिताब की उम्मीद आपको करनी पड़ेगी
जी। और अश्मिता चालिहा की बात करें, ये एक यंग प्लेयर है, आपको लगता है सायना सिंधु के बाद अश्मिता चालिहा से भी हम उम्मीद कर सकते हैं आगे?
देखिए बिल्कुल उम्मीद कर सकते हैं और एक अच्छा प्रदर्शन है उनका कि वो क्वार्टर फाइनल तक पहुंचे। मुझे लगता है कि सिंधु के साथ रहने से आपको जो है युवा खिलाड़ियों को बड़ा फर्क पड़ता है और आपको भी बड़ा गर्व होता है कि भाई एक ऐसी खिलाड़ी के साथ आप आगे बढ़ रही हैं कि जिसने ओलंपिक का पदक जीता हुआ, तो वो किस तरीके से बिहेव करती है, किस तरीके से अपनी प्रैक्टिस को मैनेज करती है, किस तरह अपनी फिटनेस को करती है, उनके साथ आप बात कर सकते हैं, लंबे समय तक आपको साथ रहने का मौका मिलता है जो आपको अमून वैसे नहीं मिलेगा।
तो उनके अनुभवों का
और अभी देखिए हमारी केंद्र सरकार भी इनकी पूरी मदद कर रही है। अभी पीवी सिंधु को विदेश में प्रशिक्षण के लिए वो भी उनको छूट मिली है अभी और उनका एक दौरा क्लियर हुआ है, तो मुझे लगता है कि जब वो वहां पर ट्रेनिंग करेंगे ओलंपिक से ठीक पहले तो उसका भी फायदा उनको मिलेगा
जी। बाकी दोनों में से तो पुरुष सिंगल्स और महिला डबल्स पुरुष डबल्स से हमारी चुनौती समाप्त हो गई है। पैरा एथलीट मोनू घणगस डिस्कस थ्रो में पैरा ओलंपिक टूर्नामेंट के लिए क्वालिफाई कर लिया है उन्होंने, हालांकि पदक से चूक गए राकेश। जापान के कोब में विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप चल रही है, 34.70 मीटर दूर उन्होंने डिस्कस फेंककर चौथा स्थान हासिल किया। पेरिस में हम जानते हैं पैरा ओलंपिक शुरू हो रहे हैं 28 अगस्त से 8 सितंबर तक करेंगे। पैरा एथलीट भी देखा जाए तो हमारे आजकल बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं।
देखिए बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं और इसके पीछे उनकी मेहनत तो है ही है, लेकिन साथ साथ जो केंद्र सरकार ने और राज्य सरकारों ने जिस तरीके से खिलाड़ियों का इनका प्रोत्साहन किया, जिस तरीके से इनकी इनामी राशि बराबर की, इनका हर तरीके का सम्मान बराबर किया है और हर तरह की सुविधा इनको देने की शुरूआत हुई है, तो उससे कहीं ना कहीं इनका हौसला बहुत बड़ा है। और जो हमारे खिलाड़ी पदक जीतते हैं तो दूसरे जो हमारे खिलाड़ी हैं जो गांव में, शहरों में या छोटे छोटे कस्बों में, उनके माता पिता को भी उम्मीद जगती है कि भाई अगर हम अपने बच्चे को खेल में डालेंगे, इसको इसके ऊपर मेहनत करें।
अच्छा,
और जगह जगह आप क्या कोचिंग फैसिलिटी भी डेवलप होती जा रही है, तो इसका भी कहीं ना कहीं फायदा है। तो जो सरकार की योजनाएं हैं उनका बहुत बड़ा रोल इन खिलाड़ियों में रहा है और उसके बाद इन खिलाड़ियों की मेहनत और इनका जो आप कह सकते हैं कि इनके अंदर जो इस तरीके की भावना आती है कि भाई हमें कुछ करके दिखाना है, वो बहुत बड़ी चीज है।
जाहिर तौर पर जैसे दीपा मलिक या और बाकी खिलाड़ियों का काम देखें हम, तो वो भी प्रेरणा के स्रोत रहे होंगे कि जब ये जीत सकते हैं और इनको इतना सपोर्ट तो आगे भी खिलाड़ी
जैसे जाएंगे। दीपा मलिक की बात की तो दीपा मलिक ने न केवल पदक जीते बल्कि देखें इनके जो पैरालंपिक कमेटी ऑफ इंडिया उसकी अध्यक्ष बनकर उसको भी बेहतर ढंग से संभाला। अब जो देवेंद्र झाझड़िया जो और एक पैरा एथलीट हमारे रहे हैं ओलंपिक के मेडलिस्ट, वो इसके अध्यक्ष बने हैं, तो ये अच्छी बात हो रही है कि वो एडमिनिस्ट्रेशन भी अच्छा संभाल रहे हैं, प्रशासन और खिलाड़ियों को भी एक कॉन्फिडेंस रहता है। जब एक खिलाड़ी आपका अध्यक्ष होता है खेल के संगठन का, तो आप जाके उसको अपनी समस्याएं बता सकते हैं, हर चीज बता सकते हैं, जो भी आपको सुविधा चाहिए, और वो खिलाड़ी भी एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आपको सारी सुविधाएं दिलवाने की कोशिश करते हैं
जी। आप अभी योजनाओं की बात कर रहे थे राकेश, तो आईओसी की एक और योजना पेरिस ओलंपिक खेलों में भाग लेने वाले खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए लेट्स मूव इंडिया पहल शुरू करने की घोषणा की है। इसका उद्देश्य देशभर के लोगों को सोशल मीडिया के जरिए इस अभियान में शामिल करना है। 23 जून को ओलंपिक दिवस के अवसर पर क्षेत्रीय स्कूल इस अभियान में भाग ले सकते हैं, पसंदीदा खिलाड़ी को प्रोत्साहित कर सकते हैं। आईओसी ने बताया कि पहले व्यक्तिगत ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता आईओसी एथलीट आयोग के सदस्य अभिनव बिंद्रा के साथ हमने हाथ मिलाया है और देशभर के स्कूलों को इस अभियान में शामिल करने के लिए प्रेरित करेंगे। तो यह भी एक अच्छी शुरूआत, अगर कोई मूव ऐसा चलता है और खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करता है।
देखिए इससे ओलंपिक्स के बारे में लोगों को पता चलता है, जो हमारी उभरते बच्चे हैं स्कूल लेवल पे, उनको भी एक समझ आता है कि भाई ओलंपिक की क्या मूवमेंट है, क्या ओलंपिक्स में हमारे खिलाड़ियों को क्या प्रदर्शन, क्योंकि आज की पीढ़ी को कई बार जो पिछले प्रदर्शन है ना वो उतने याद नहीं रह पाते, करंट चीजें तो उनको पता रहती है। अब हो सकता है कि बहुत से स्कूली बच्चे होंगे जिनको अभिनव बिंद्रा का नहीं पता होगा कि भाई उन्होंने ओलंपिक्स में क्या किया है, तो मुझे लगता है ऐसा मिलने के बाद, उनकी बातचीतें सुनने के बाद, सोशल मीडिया में पार्टिसिपेट करने के बाद, तो वो बच्चे भी प्रेरित होते हैं कि खिलाड़ी बनके हम भी ओलंपिक्स में खेलें।
बात करें आईपीएल क्रिकेट की, एलिमिनेटर मुकाबले में कल राजस्थान रॉयल्स ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 4 विकेट से हरा दिया। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में बेंगलुरु ने 174 रन का लक्ष्य दिया था, राजस्थान ने यह लक्ष्य हासिल कर लिया 19 ओवर में। विराट कोहली का खासतौर पर इसमें जिक्र करना चाहेंगे, आईपीएल में 8000 रन बनाने वाले पहले बल्लेबाज बन गए हैं। कोहली ने हालांकि इस मुकाबले में 33 रन बनाए। राजस्थान रॉयल्स कल दूसरे क्वालिफायर में राजस्थान जो है उसका मुकाबला होगा सनराइजर्स हैदराबाद से। पहले कल का जो मैच हारे रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु हार गया, मतलब बैड लक उसका।
बिल्कुल देखिए जैसे उनसे रनों की उम्मीद थी वैसे रन वहां पर बन नहीं पाए, और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं लोग आईपीएल में कहते हैं छोटी बाउंड्रीज है, लेकिन इस मैच के अंदर तो ऐसी धमाकेदार बल्लेबाजी देखने को नहीं मिली भाई जिस तरह की हो, लेकिन जो उनके जो गेंदबाज हैं उन्होंने बड़ा अच्छा प्रदर्शन किया। अश्विन को लें, आवेश खान को लें, ट्रेंट बोल्ट को लें, तो इन्होंने पूरी तरह से आरसीबी के बल्लेबाजों को बांध के रखा और मैच 172 रन बना पाए। विराट कोहली के ऊपर टीम काफी वो डिपेंड कर रही थी, लेकिन विराट कोहली वैसा धमाकेदार प्रदर्शन इस मैच में नहीं कर सके। मैच 33 रन उन्होंने बनाए और रजत पाटीदार भी 34 रन ही बना पाए, तो महिपाल ने जरूर अंत में 17 गेंदों में 32 रन का योगदान दिया, लेकिन एक बड़ा स्कोर चाहिए था। जब आप ऐसे ये नॉकआउट मैच होते हैं ना, इनको जीतने के लिए आपको बड़ा स्कोर चाहिए।
और जैसा हमने अभी कहा, कल दूसरा क्वालिफायर होगा राजस्थान रॉयल्स और सनराइजर्स हैदराबाद के बाद। स्पर्श की रिपोर्ट सुनते हैं, फिर चर्चा करेंगे।
दोनों ही टीमों के लिए ये मुकाबला करो या मरो की तरह होगा। तालिका में शीर्ष दो पर रहने के कारण हैदराबाद को फाइनल के लिए क्वालिफाई करने का एक और मौका मिला है, जबकि राजस्थान को खिताबी मैच में प्रवेश करने के लिए एक और बाधा को पार करना होगा। दोनों ही टीमें इससे पहले भी क्वालिफायर दो में हिस्सा ले चुकी हैं और राजस्थान तथा हैदराबाद के लिए ये खट्टी मीठी यादें भरा दौर रहा है। क्वालिफायर दो में हैदराबाद का रिकॉर्ड बेहतर रहा है। पैट कमिंस की अगुवाई वाली ये टीम अब तक तीन बार क्वालिफायर दो में हिस्सा ले चुकी है, जहां दो बार टीम को सफलता मिली है जबकि एक मैच उसने गवाया है। हैदराबाद 2016 में क्वालिफायर दो मुकाबला गुजरात लायंस के खिलाफ खेली थी, जहां उसने चार विकेट से जीत दर्ज कर फाइनल में प्रवेश किया था। टीम ने इसके बाद खिताबी मुकाबले में आरसीबी को हराकर ट्रॉफी अपने नाम की थी। इसके बाद हैदराबाद 2018 सीजन में भी क्वालिफायर दो खेली और उस समय टीम ने केकेआर को 14 रनों से हराया, लेकिन फाइनल में चेन्नई सुपर किंग्स से हार गई। 2020 सीजन में भी क्वालिफायर दो मुकाबला खेला, लेकिन हैदराबाद को दिल्ली कैपिटल्स के हाथों 17 रनों से हार का सामना करना पड़ा। उधर राजस्थान की टीम ने 2008 में आईपीएल का खिताब जीता था और टीम अब तक दो बार क्वालिफायर दो में पहुंची है। टीम को इस दौरान एक बार जीत मिली जबकि एक मैच में उसे हार का सामना करना पड़ा। स्पर्श सक्सेना, स्पोर्ट्स कैन।
तो कल जो मैच होगा आरआर और राजस्थान रॉयल्स और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच, जैसे भी हम जिक्र कर रहे हैं, राजस्थान रॉयल्स वो टीम थी जो शुरू से टॉप पे जा रही थी, केकेआर ने उसे सेकंड पे ले आया और वो खैर फाइनल में पहुंच गया। कल का मैच भी दोनों ही टीमों के लिए बहुत क्रूशियल रहेगा।
नहीं देखिये, बहुत क्रूशियल मैच है और जहां तक सनराइजर्स हैदराबाद की बात है, वो यहां पर दूसरे नंबर पर रहे थे पदक तालिका के अंदर 17 अंकों के साथ, और केकेआर ने जैसे कोलकाता की टीम ने बहुत शानदार प्रदर्शन किया, 20 अंक उनके रहे, और राजस्थान रॉयल्स जो काफी समय तक पदक तालिका में टॉप में रहने के बाद में वो थोड़ा सा पिछड़ गए। लेकिन जहां तक लगता है कि देखिए, हर मैच नया होता है, पिछले रिकॉर्ड्स की मुझे नहीं लगता कि कोई भी उसको तवज्जो दी जाती है। मैं आपको एग्जाम्पल बताऊं कि राजस्थान रॉयल्स की टीम पहले ही आईपीएल की 2008 में चैंपियन बनी थी, चेन्नई सुपर किंग्स को हरा के मुंबई के डीवाई पाटिल स्टेडियम में, और मैं वहां पर रहा, मैंने पूरा आईपीएल वो कवर किया और शेन वॉन जैसा व्यक्ति उनका कप्तान था और सब युवा खिलाड़ी और बहुत नामी खिलाड़ी नहीं थे टीम के अंदर, फिर भी वो चैंपियन बने क्योंकि बेहतरीन कप्तान टीम के साथ थे वहां पर। और उसी आईपीएल में डेक्कन चार्जर्स के नाम से हैदराबाद की टीम जो थी वो आखिरी नंबर पर रही थी, लेकिन जब 2009 में दक्षिण अफ्रीका में, क्योंकि यही दिन थे और यहां पर लोकसभा के चुनाव थे, तो सिक्योरिटी ना उपलब्ध होने की वजह से वो दक्षिण अफ्रीका शिफ्ट की गई थी आईपीएल, तो उसमें डेक्कन चार्जर्स की टीम चैंपियन बनी थी 2009 में, जबकि 2008 में वो आखिरी पायदान पर रहे थे। तो ये आईपीएल के अंदर ये बड़ी चीज होती है। आरसीबी को अगर देखें, शुरुआत के मैच लगातार उन्होंने हारे, शायद 8 में से 7 मैच उन्होंने हारे, फिर लगातार जीते तो 6 मैच जीतते चले गए, लेकिन जो एक क्रूशल मैच था उसमें वो वैसा प्रदर्शन नहीं कर सके कल, तो उसमें मार खा गए। तो मुझे लगता है कि जब भी कोई मैच होता है तो पिछली सारी चीजें ना पीछे छूट जाती हैं, क्योंकि आपके प्लेयर्स बदले हुए होते हैं, मैदान एक अलग तरीके का होता है, आप अलग तरह का प्रदर्शन करके चैंपियनशिप में आगे बढ़े होते हैं,
कैसे प्रदर्शन कर रहे हैं,
तो पर्टिकुलर उस दिन आप कैसा प्रदर्शन करते हैं वो सबसे महत्वपूर्ण चीज हो जाती है।
इस बीच दिनेश कार्तिक ने आईपीएल और अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट को अलविदा कह दिया है। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का प्रतिनिधित्व कर रहे थे कार्तिक ने, कल जो मैच हारे उसके बाद जो है अलविदा कह दिया। भारतीय मुक्केबाज कल से बैंकॉक में शुरू हो रहे दूसरे विश्व क्वालिफिकेशन टूर्नामेंट में पेरिस ओलंपिक के लिए उपलब्ध अंतिम स्थान हासिल करने के इरादे से रिंग में उतरेंगे। पिछले क्वालिफाइंग टूर्नामेंट तक भारतीय मुक्केबाजों ने 4 कोटे हासिल किए थे राकेश, लेकिन जैसे हमें मालूम है कि महिलाओं के 57 किलोग्राम भार वर्ग में परवीन हुड्डा जो है उन्हें 22 महीने का प्रतिबंध लगाया गया, 3 मुक्केबाज रह गए हैं, तो कल जाहिर तौर पे कोशिश करेंगे कि ये कोटा वाला हासिल कर लें।
अब देखिए कि किस तरीके का बैन ये लगा आपने, कितना बड़ा ओलंपिक का चांस, और अब इनका तो एशियाड का पदक भी छीनने की तैयारी चल रही है, और बहुत मामूली बात है, आप डोपिंग में नहीं पकड़े गए, सिर्फ आपको जो अपनी वेयर बाउट्स वाली क्लॉज थी उसका उल्लंघन आपने कर दिया और एक बार से ज्यादा कर दिया, तो एक मतलब आज के युग में जब इतना समझाया जाता है, सब कुछ चीजें की जाती हैं, उसके बाद भी अगर हमारे खिलाड़ी इस तरीके का लापरवाही, तो मुझे लग रहा है कि ये अब इसमें फेडरेशन है, इसमें इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन है, वो लोग भी क्या करेंगे जब खिलाड़ी चीजों को सुन समझ नहीं रहे और आपने इतना बड़ा मौका गंवा दिया।
आपको रोकेंगे क्योंकि घड़ी की सुइयां इशारा कर रही हैं, तो कार्यक्रम को यहीं विराम दीजिए। आप हमारे स्टूडियो में आए, तमाम खेल खबरों पर चर्चा हुई, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
शुक्रिया।
श्रोताओं, हम कल फिर मिलेंगे, फिलहाल शुभरात्रि।